नमस्कार आदाब दोस्तों, दुनिया गोल है और भूगोल के सवाल भी गोल गोल है, तो घबराने की क्या बात है जब मोबाइल वाणी के क्वेश्चन मार्क शाला आपके साथ है, जहां भूगोल विषय के विशेषज्ञ आपको देने वाले हैं नए अध्याय की नई सीख। चलिए सुनते हैं उन्हें।
इस भाग में हम लोग पृथ्वी की ऊपरी परत में विद्यमान विभिन्न स्वरूपों के बारे में जानेंगे, आखिर पर्वत, पठार, मैदान, ये अंतर क्यों है। दरअसल यह जो ऊपरी परत है, वह प्रारंभ में जो स्वरूप था वह आज नहीं है और आज जो है वह कल नहीं रहे, ऐसा भूगोल वेताओं का मत है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह सच है तो पृथ्वी के अंदर और बाहर कौन सी ऐसी शक्ति है जो पृथ्वी के इस विशाल बाह्य स्वरूप में परिवर्तन लाती रहती है। तो पृथ्वी पर दो शक्तियां कार्य कर रही है, एक है आंतरिक शक्ति और दूसरा है बाह्य शक्ति, जिसे हम अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल भी कहते हैं। पृथ्वी सबसे ऊपरी परत जो भूपर्पटी है, वह भूपर्पटी के नीचे जो मेंटल है वह तरल अवस्था में और वह आज भी हरकत करती रहती है और भूपर्पटी को प्रभावित करती रहती है। इस आंतरिक एवं बाह्य कारणों से वह बाहर निकलने का प्रयास करती है और धरातल के ऊपरी कमजोर परतों को तोड़ते हुए बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो भूपर्पटी के ऊपर बड़ा परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को ही हम आंतरिक बल कहते हैं, और जिसमें पृथ्वी के अंदर मैग्मा है और वह बाहर जब निकलती है तो वह लावा के रूप में होती है और वह धरातल पर फैल जाती है और इस प्रकार यह ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है, भूस्खलन की स्थिति उत्पन्न करती है आंतरिक शक्ति के कारण, और भूकंप का भी अनुभव होता है। इस प्रकार हम आंतरिक शक्ति में अंतर्जनित के बाद हम बहिर्जनित की बात करते हैं। बहिर्जनित दो प्रकार के हैं। बहिर्जनित से हमारा अभिप्राय है भूपर्पटी के ऊपर बाह्य शक्ति, जिसके बल पर धरातल की ऊपरी परतों में परिवर्तन होता रहता है। जो बहिर्जनित हैं उसमें दो बल कार्य करते हैं, एक है ऊर्ध्वाधर और दूसरा है क्षैतिज। तो अभी जो हम बात कर रहे थे वह था अंतर्जनित बल, अब जो बात कर रहे हैं मंद अंतर्जनित बल। इसमें धरातल के ऊपर मुख्य रूप से ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतियां कार्य करती है। ऊर्ध्वाधर में धरातल के नीचे की शक्ति जो मैग्मा जब ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करती है तो कभी कभी धरातल का बड़ा भूखंड अचानक ऊपर की ओर उठ जाता है और उठे हुए भाग को हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। दो भाग जब ऊपर उठता है तो बीच वाली भाग धस जाती है, अर्थात नीचे का मैग्मा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने के कारण तो उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं, और इस प्रकार यह जो है रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी कहते हैं। दूसरा है क्षैतिज गति। ये क्षैतिज गति पृथ्वी पर अपसारी, अवसारी और रूपांतरित जो प्लेटें हैं, इसमें जब दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती है तो कठोर प्लेटें अपनी जगह स्थिर रहती है और जो प्लेट आगे की ओर बढ़ती है वह दूसरे प्लेट पर दबाव डालती है और दबाव डालने के कारण भूपर्पटी का ऊपरी परत वह मुड़ जाता है और उस मुड़ने से पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम वलित पर्वत कहते हैं। और इस प्रकार के वलित पर्वत हमारे उत्तर में भारत में स्थित हिमालय पर्वत सबसे नवीन वलित पर्वत है। अनेक पर्वत धरातल पर पाए जाते हैं, लेकिन अब जब हम बहिर्जनित बल की बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य रूप से जल, पवन, हिमनद, समुद्र की लहरें, ये मुख्य रूप से धरातल के स्वरूप को बदलने का कार्य करती है। इसमें तीन क्रिया होती है, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपरदन मुख्य रूप से इन कारकों द्वारा जब किसी ठोस भाव को उसके मूल स्थान से उठा ले जाती है तो उसे अपरदन कहते हैं, और वह जब तक उसे अपने साथ बहा ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, तब तक उस कालखंड को हम परिवहन कहते हैं, और जिस जगह इसकी गति कम हो जाती है वहां यह अपने साथ लिए मृदा की कणों को निक्षेपित कर देती है और उसे हम निक्षेपण कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जाने अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अब है कि स्थलाकृति का निर्माण जो होता है तो उसमें एक और है, वह है अपक्षय, वेदरिंग। वेदरिंग में होता क्या है कि जब कोई चट्टान अपने मूल स्थान पर है और सूर्य की ताप के कारण ऊपरी परत गर्म होती है, रात में ठंडी होती है, तो बार बार दिन में गर्म और रात में ठंड होने के कारण ऊपरी परत कमजोर हो जाती है और कमजोर होकर वह धीरे धीरे ऊपर जो है प्याज के छिलके के समान वह हटती जाती है और अपने ही स्थान पर नीचे गिरकर जमा होती है। तो अर्थात अपक्षय उसे कहते हैं जब शैलें प्राकृतिक कारण से अपने ही स्थान पर टूट टूट कर छोटे कणों में अपने निचले स्थानों में जमा होती है तो इस क्रिया को हम अपचय कहते हैं। लेकिन नदी के कार्य की जब बात करें, जब स्थलाकृति की बात कर रहे हैं, तो नदी प्रारंभ में जब चलती है पर्वतीय भागों उच्च भाग से निम्न भाग की ओर चलती है, तो ऊपरी भागों में बहती हुई तेज गति होने के कारण वह मुख्य रूप से जलप्रपात का निर्माण करती है, और जब मैदान में आती है तो गति धीमी हो जाती है, और गति धीमी होने के कारण वह विसर्प मार्ग का निर्माण करती है, और जब डेल्टा की ओर पहुंचती है अर्थात सागर में निकट पहुंचती है तो उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है, और धीमी होने के कारण अपने साथ लाए हुए मृदा को वो निक्षेपित करती है जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार समुद्री लहरें भी सागरीय तट पर लगातार टकराती रहती है, और टकराने से अपरदन परिवहन और निक्षेपण का कार्य होता रहता है, और यह जो है जब बार बार टकराती है तो कमजोर सैलें टूट जाती है और इस कारण समुद्र तट पर गुफा का निर्माण होता है जिसे समुद्री गुफा कहते हैं। फिर जो है जब ये चारों ओर टूट जाती है और एक स्तंभ के रूप में ऊपर से नीचे तक गोल आकृति बनाती है, अर्धचंद्राकार आकृति बनाती है, तो उसे हम मेहराब कहते हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार जहाँ ये समुद्री जल के ऊपर उठे हुए शैल स्तंभ को हम जो है समुद्री भृगु भी कहते हैं, और इस प्रकार लगातार समुद्री लहरें किनारों पर अवसाद भी जमा करती रहती है जिससे एक लंबा समुद्र तटीय भागों में नए स्थल का निर्माण होता है जिसे हम समुद्री पुलीन कहते हैं। इस प्रकार हिम क्षेत्रों में भी जब बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने ऊपर से नीचे की ओर खिसकती हुई चलती है तो कठोर शैलों को वह घिसती हुई आगे बढ़ती है जिससे यू प्रकार की घाटी का निर्माण होता है, और नीचे जब अपने साथ कंकर बड़े बड़े टुकड़े छोटे बड़े टुकड़े को बहा कर लाती है तो निम्न भागों में वो जमा करती है, और जमा करने से हिमोड का निर्माण होता है। इस प्रकार पवन से भी, पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपने क्रिया विशेष रूप से करती है, जब हवाएं तेज चलती है तो सामने पड़े शैल को वह अपने साथ उड़ते हुए बालू के छोटे कणों को श्रेष्ठ कागज की तरह वह घिसती हुई आगे की ओर निकलती है जिससे छत्रक शैल का निर्माण होता है, और जहाँ रास्ते में ऊंचे पर्वत मिल जाते हैं तो वहाँ अवरोध होने के कारण वह बालू जमा हो जाती है और वह लगातार बढ़ते बढ़ते एक टीले के रूप में बन जाती है जिसे रेत के टीले कहते हैं। और अंत में हम यह भी जानते हैं कि अत्यधिक महीन कण जब एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, विशाल क्षेत्र में निक्षेपित हो जाता है, उसे हम लोयस निक्षेप कहते हैं। इस प्रकार हमने इस पाठ को पूरा किया पृथ्वी के बदलते हुए स्वरूप। धन्यवाद।
तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे, और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाए नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।